आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी को दोबारा चुनाव जीतने के बाद लेबर कॉकस को दिए गए अपने पहले संबोधन के दौरान बेहद गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि उनके एजेंडे में सबसे पहला काम छात्र ऋणों को 20% तक कम करना है। पार्टी में एकता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने लेबर सदस्यों से आग्रह किया कि वे ऑस्ट्रेलियाई जनता पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने आज की बैठक की तुलना 125 वर्ष पहले हुई पहली लेबर कॉकस बैठक से करते हुए कहा कि उन्हें लेबर की विविधता पर गर्व है। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस और उद्योग मंत्री एड ह्यूसिक को मंत्रालय से हटा दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने श्री ह्यूसिक को हटाए जाने की ये कहते हुए निंदा की है कि कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम सदस्य को हटाना उस मुस्लिम समुदाय का अपमान है जिसने लेबर का समर्थन किया। लेबर के अन्य सांसद भी मुस्लिम पहचान रखते हैं, जैसे एन अली, जिन्हें नए कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं पीटर डटन को पद से हटाए जाने के बाद लिबरल पार्टी का नेतृत्व संभालने की दौड़ में अब दो उम्मीदवार बचे हैं, डिप्टी लीडर सुजन ले और विपक्ष कोषाध्यक्ष एंगस टेलर। गठबंधन सेनेटर जैसिंटा नापंजिपा प्राइस ने नेशनल्स पार्टी छोड़ने और लिबरल्स में शामिल होने की घोषणा की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे एंगस टेलर की डिप्टी के रूप में दौड़ में शामिल होंगी। इस फैसले से कुछ वरिष्ठ नेशनल्स सदस्य नाराज हैं। नेशनल सेनेटर ब्रिजिट मैकिन्जी ने स्काई न्यूज से कहा कि लिबरल्स को खुद को बचाने के लिए नेशनल्स को कमजोर नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर कार्यवाहक ग्रीन्स नेता निक मैकिम ने घोषणा की है कि पार्टी अगले गुरुवार यानी 15 मई को नए नेता के चयन के लिए बैठक करेगी। फेडरल ग्रीन्स नेता एडम बैंड के अपनी मेलबर्न सीट लेबर की सारा विटी से हारने के बाद ये पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है। वर्तमान डिप्टी लीडर मैरीन फारूकी और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर सारा हैंसन यंग को नेतृत्व की दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। निक मैकिम ने कहा कि एडम बैंट ने पार्टी के लिए एक प्रेरणादायक नेता के रूप में सेवा दी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक समुदाय ने उत्तर अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को नए पोप के रूप में चुने जाने का स्वागत किया है। कार्डिनल प्रिवोस्ट, जो पोप लियो द 14th के नाम से जाने जाएंगे, पोप पद पर नियुक्त होने वाले पहले मूल अंग्रेजी भाषी और पहले अमेरिकी नागरिक हैं। पोप लियो ने पेरू में दशकों तक मिशनरी के रूप में सेवा की, जिसके बाद पोप फ्रांसिस ने उन्हें वैटिकन की बिशप चयन प्रक्रिया का नेतृत्व सौंपा था। आने खबर में विक्टोरिया पुलिस ने डेटिंग ऐप उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी तब आती है जब 13 से 20 वर्ष के 30 से अधिक युवाओं को पुरुषों पर कथित हमले, अपहरण और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी डेटिंग ऐप्स के जरिए पुरुषों को मिलने के लिए बुलाते थे और फिर उन पर हमला करते थे। एक 16 वर्षीय किशोर पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप भी लगा है। हमलों की घटनाएं मैनिंगम, केसी, ह्यूम, मुराबिन और नॉक्स जैसे क्षेत्रों में हुई, जिनमें से कुछ को वीडियो में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया। पुलिस ने लोगों से अपनी पहचान और लोकेशन की सुरक्षा करने और मिलने से पहले सामने वाले व्यक्ति की पुष्टि करने की अपील की है। मामले की जांच जारी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वे गाजा में सहायता पहुंचाने के समाधान के करीब हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों ने इसराइल की योजना पर संदेह और नाराजगी जताई है। ये घोषणा इसराइल की उस प्रस्तावित योजना के बाद आई है जिसमें गाजा पर आक्रमण कर उसे कब्जे में लेने और सहायता वितरण की जिम्मेदारी स्थापित राहत संगठनों के बजाय निजी कंपनियों को सौंपने की बात कही गई है। यूरोपीय नेताओं और राहत समूहों ने इन योजनाओं पर असंतोष जताते हुए चिंता व्यक्त की है कि यह योजना सहायता वितरण की जटिलता को नजरअंदाज करती है। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने भारत की पश्चिमी सीमा के पूरे क्षेत्र में कई हमले किए हैं। परमाणु संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार यानी 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला करने के बाद से दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। भारत का कहना है कि ये हमले पिछले महीने भारतीय प्रशासित कश्मीर में हुए एक घातक हमले के जवाब में किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने भारत के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि पहलगाम में हुए हमले पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थे। बुधवार से अब तक सीमा के दोनों ओर कम से कम 48 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू, जिसके कुछ हिस्से हमले की चपेट में हैं, वहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने हालात को कभी इतना बुरा नहीं देखा। इसी के साथ आज यानी 9 मई 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।